सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे बहुत ध्यान से पढ़ें या यूं कह लीजिए बहुत ध्यान से सुने, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, खासकर डेली ऑडियो लेक्चर के संदर्भ में। लेकिन आइए, इससे पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आपने कल दूरदर्शन की खबर देखी हो तो दो खबरें बड़े प्रोमिनेंटली उसमें दिखाई गई और बहुत विस्तार के साथ बताई गई। देखिए, जो रेडियो न्यूज़ होती है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसमें न्यूज़ को बहुत विस्तार के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि रेडियो न्यूज़ होती ही कितनी देर की है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने होते हैं। लेकिन दूरदर्शन उन्हें बहुत विस्तार के साथ लेता है, बाकायदे उनकी बैकग्राउंड भी बताएगा, फिर रिटेन फॉर्मेट में स्क्रीन पर भी वो चीज़ें लिखी हुई आएंगी, फिर उस पर स्टेटमेंट भी आएंगे, अगर बहुत अच्छा विषय हुआ तो उस पर डिस्कशन भी कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो दूरदर्शन की जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेडियो न्यूज़ सुनेंगे ही नहीं और अखबार पढ़ेंगे ही नहीं। तो कल जिन मैं दो खबरों की बात कर रहा हूं आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, बशर्ते कि आपने न्यूज़ देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो अब देख लीजिएगा। उसमें एक है बायोटेक्नोलॉजी पर, बायोटेक्नोलॉजी जिसके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बायो इकोनॉमी, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में। अभी आपको मालूम है कि दो दिनों के एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, दिल्ली में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। अब आप देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। बायोटेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गया, अर्थव्यवस्था है तो ये आपके अर्थशास्त्र का हिस्सा हो गया, यानी दो विषयों को ये एक साथ कवर कर रहा है। और दूरदर्शन की जो प्रस्तुति थी वो बड़े खूबसूरत तरीके की प्रस्तुति थी। अखबारों में भी आज इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ा दिया हुआ है, किसी किसी अखबार ने थोड़ा सा ज़्यादा कवर किया है। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी ये बातें कहीं, और जब उसके बारे में ब्यौरा दिया जा रहा था तो उसमें भी इन बातों को दिखाया गया। और मुझे एक बात और अच्छी लगी कि उसमें एक ही बात को दो तीन बार भी दिखाया गया, क्योंकि जब हम एक ही बार में किसी चीज को दो तीन बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में वो चीजें ज्यादा अंडरलाइन हो जाती हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए उसमें उन्होंने क्या बताया। टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो पिछले आठ साल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनके 8 साल अभी अभी पूरे हुए हैं, तो जो डेटा दे रहे हैं कि पिछले 8 साल में क्या क्या किस किस तरह के परिवर्तन और भी दूसरे क्षेत्रों में हुए। तो एक डेटा उन्होंने ये दिया कि हमारी $10 अरब की जो अर्थव्यवस्था थी बायोटेक्नोलॉजी की, वो 8 गुना बढ़ करके $80 अरब वाली हो गई, यानी कि 8 गुना इस क्षेत्र में वृद्धि हुई। 8 साल पहले बायो के हमारे पास जहां मुश्किल से 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए, अब उनकी संख्या लगभग 700 हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए उसमें स्टार्टअप्स के भी बहुत अच्छे हमें आंकड़े सुनने को मिले कि अभी हमारे देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हैं, और आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो लगभग 70,000 स्टार्टअप में 5,000 जो स्टार्टअप्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि हर 14 में एक जो स्टार्टअप है वो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि भारत बायोटेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बहुत अच्छा करने जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि भारत बहुत जल्दी जो शीर्ष 10 देश हैं खासकर बायोटेक्नोलॉजी के, उनमें पहुँच जाएगा। तो आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात उसमें बताई गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि 3 क्षेत्रों में अभी खूब बातें हो रही हैं और भारत को सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है, हब बनाने की कोशिश की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की, इससे पहले हम ड्रोन के बारे में बात कर चुके हैं, ड्रोन हब के बारे में, और काफ़ी पहले हमने सेमीकंडक्टर हब के बारे में भी बात की है कि सरकार की कोशिश है कि इन क्षेत्रों में भारत एक तरह से विश्व का केंद्र बने, और आइए भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया, इसके तहत लगातार इन सबको आमंत्रित भी किया जा रहा है और भारत सरकार भी लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है, मतलब कार्य की सुगमता, व्यापार की सुगमता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी हैं हमारे यहाँ आकर के इन उद्योगों की शुरुआत करें। तो दोस्तों, जब आप देखते हैं, देखिए थोड़ी देर की बात है, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतनी लेटेस्ट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाती हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरा विषय था वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के था। राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं अब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूँ। आप बकायदे इस पर अच्छी तैयारी करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जैसे अभी जुलाई में चुनाव हो जाएंगे, जून जुलाई में, तो नेक्स्ट ईयर का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। यहां तक मैंने देखा है कि नेक्स्ट ईयर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उन पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, और बकायदे चुनाव पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दावा तो नहीं किया जा सकता कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन जो चीज़ हमारे पास प्रमाण के रूप में पीछे मौजूद हैं, हम उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इस टॉपिक पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अभी जो एग्जामिनेशन का पेपर आया है प्री का, अभी जो 5 जून को हुआ, उसमें मैं थोड़ा सा उसके चरित्र में बदलाव देख रहा हूँ। हो सकता है कि वो टॉपिक आपके सिलेबस का हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं या जिस तरह के आपसे अपेक्षाएं की गई हैं वे उन किताबों में ना हो। तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जब कुछ बातें बताई जा रही थी तो वास्तव में कुछ तथ्य ऐसे थे जो आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर उसमें ये बताया गया कि संसद भवन में एक होगा जहां पर लोग मतदान कर सकेंगे, और हमारे जितने भी राज्य हैं उनके जो विधानसभा परिसर हैं उनमें मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सांसद भी वोट देते हैं और इसमें MLA भी वोट देते हैं। अब आप देखिए कि उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई, और वो ये कि कोई भी, चाहे MLA हो या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो देश के किसी भी केंद्र पर जाकर के मतदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो मतदान केंद्र होगा उसी क्षेत्र का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कर सकता है। बस इसके बारे में 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले उसे चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि वो यहाँ मतदान करना चाह रहे हैं, ताकि वोटिंग लिस्ट को करेक्ट किया जा सके या वहाँ सूचना दी जा सके। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन जानकारी नहीं रहती है। दूसरा ये भी कहा गया कि जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। व्हिप जारी करने का मतलब है कि पार्टी का यह निर्देश कि नहीं नहीं आपको यही वोट देना होगा, इसी उम्मीदवार को वोट देना होगा, इस तरह के आदेश नहीं दे सकती। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। जो राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये तो हो सकता है कि आपको किताबों में पढ़ने को मिल भी जाए। बकायदे जब आप मतदान करते हैं तो आपको अपने प्रेफरेंस देने पड़ते हैं, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें लगी कि जो आप प्रेफरेंस देंगे 1, 2, 3, 4, ये आपको अंकों में लिखना होगा, शब्दों में नहीं, कि 1, 3 नहीं, वो आपको अंकों में ही लिखना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अंक आप कोई भी ले सकते, किसी भी भाषा के अंक ले सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ने को मिली, सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी वहाँ। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है तो देखिए, किताबें तो आपकी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, थोड़ा समय चाहूँगा कि इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ दैनिक भास्कर का, GST को लेकर के है, GST काउंसिल को लेकर के। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और इससे इम्पॉर्टेंट नोट्स भी तैयार कर लें, खासकर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैंने जानबूझकर के ये रखा है कि जब भी आप चाहे अखबार पढ़ रहे हों, जैसा कि मैंने कहा आप दूरदर्शन की न्यूज़ देख रहे हों और सुन रहे हों, तो दोनों काम एक साथ होते हैं, या रेडियो न्यूज़ सुन रहे हों या मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हों, तो आपको चाहिए कि आप पूरी सतर्कता के साथ सुने, ध्यान से सुने, बस केवल ध्यान से सुने। ये नहीं कि बस टालने के लिए कि चूंकि सुनना है तो सुन रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, किसी से और बात कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और न्यूज़ चल रही है और आपको भ्रम हो रहा है कि आप सुने। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत मेल आया है, इससे पहले भी मेल आए हैं जिसमें मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं, जो सुनने वाले श्रोता हैं, उन्होंने कई प्रश्नों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि किस तरह से डेली ऑडियो लेक्चर से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे पास अभी जो एक मेल आया है वो उमेश सैनी का है, जो सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं और हमारे एक स्टूडेंट रहे हैं। मैं इनके मेल को आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं ज्यों कहते हूँ वो मेल पढ़ करके सुना रहा हूँ, और उसके बाद ही अगर समय मिला तो फिर इस पर मैं कुछ बात करूँगा। आप सीधे सीधे मेल सुनिए, मैं शब्दशः पूरी ईमानदारी के साथ मेल आपको सुना रहा हूँ। ऊपर लिखा है उन्होंने उमेश सैनी, डियर सर, आई एम उमेश सैनी फ्रॉम सवाई माधोपुर राजस्थान। Sir, a lot of questions found in pre-2022, it fully based on DL, daily audio lecture. यानी कि सर, 2022 में जो questions पूछे गए हैं उनमें से बहुत से questions सीधे सीधे daily audio lecture से आए हैं। यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डेली ऑडियो लेक्चर्स, इनकी चर्चा आपने डेली ऑडियो लेक्चर में पहले से ही की थी। दिस ईयर, इस साल डेली ऑडियो लेक्चर से मेरा प्री में होगा 100%, यानी कि चूंकि मैं डेली ऑडियो लेक्चर सुनता रहा हूं, इसलिए इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि 100% विश्वास है कि मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, मैं वो टॉपिक्स अब आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स 25 हैं। पहला है पीएम टेम्पल विजिट, इससे दो क्वेश्चन आए थे, प्रधानमंत्री की मंदिर यात्रा गए थे जब, टर्की के स्टेट्स, सेंकाकू आइलैंड, कंट्रीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, फिफ्थ शेड्यूल, यूएन जनरल असेंबली, एआईआईबी, एमटीसीआर, एससीओ, वियतनाम, हु कंट्रोल इन्फ्लेशन, एनएफटी, क्लाइमेट एक्शन टेकर, डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, वेटलैंड से दो क्वेश्चन आए हैं, मियावाकी मेथड, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोविड वैक्सीन, 11 कंट्रीज, अफगानिस्तान नेबरहुड कंट्री, पावर ऑफ लोकसभा, एंटी डिफेक्शन लॉ, रीट्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लास्ट 25th है रियल सेक्टर। माय अंडरस्टैंडिंग आई फाउंड दीज टॉपिक्स, मैं अपनी समझ से मुझे ये टॉपिक्स मिले हैं, सम टॉपिक्स हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट भी गए हैं हों, थैंक यू सर। दोस्तों ये उन्होंने लिखा, आप सब भी इसे चेक कर सकते हैं। 25 उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं और दो टॉपिक्स इनमें ऐसे हैं जिनसे दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे इन्हें पूरा भरोसा हो गया कि 100% इन्हें सफलता मिलेगी। आप सबने भी डेली ऑडियो लेक्चर सुना होगा, अब आप अपनी तरफ से अपना मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने सुना तो आप उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। बाद में संभव हुआ तो हम लोग इस टॉपिक पर और आगे बात करेंगे दोस्तों। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में हैं, इसके लिए धौलपुर राजस्थान के नमन बंसल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो नमन, आपका एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सौम्य रंजन मिश्रा ओडिशा से, उमेश सैनी जिनकी मैंने अभी चर्चा की और सुयश तिर्की, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।